नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 34 पृष्ठ संख्या 536। मेरे विषय बोलिए। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया जिससे तू लेकिन धर्म धार्मिकता काम इंद्रिय तृप्ति अर्थान तथा आर्थिक विकास को धृत्या संकल्प या धृति से धारयते धारण करता है अर्जुन ही अर्जुन प्रसंगेन आसक्ति के कारण फल आकांक्षी कर्म फल की इच्छा करने वाला धृति ही संकल्प या धृति सा वह पार्थ हे प्रथापुत्र राजसी रजोगुणी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। लेकिन हे अर्जुन जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो यहाँ धागा निकालकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, या तू धर्म कामार्थान धृत्या धारे तेर जुन, जिस धृति के द्वारा धर्म अर्थ और काम को धारण करता है मनुष्य, तो ये वो धृति राजसी है यानी रजोगुणी है। ये संकल्प शक्ति रजोगुणी है, जिस संकल्प शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों को धारण करता है। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने सात्विकी धृति का वर्णन किया था, जिसमें कि कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति तत्पर होकर के मन प्राण इंद्रिय को बस में करता है, और यहाँ रजोगुणी में क्या है, धर्म अर्थ और काम, मोक्ष नहीं है, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वह रजोगुणी होता है। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। हाँ, तो रजोगुणी जो धारणा है या धृति है, तो इसमें धर्म अर्थ और काम तीन चीजें हैं। काम का मतलब इंद्रिय तृप्ति है ना, लेकिन धर्म रहता है, रजोगुण में धर्म रहता है और इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्ति के द्वारा फिर कोई व्यक्ति पाप भी करता है ना। काम भगवान का काम शत्रु है जो पाप कराता है। तो रजोगुण में क्या है, धर्म भी अधर्म दोनों का मिश्रण रहता है, और धर्म में भी कोई व्यक्ति काफी धर्म भी संचित कर सकता है, बहुत पुण्य भी संचय कर सकता है, है? और काम की बस में होकर के किसी भी समय वो पाप कर्म में फंस सकता है, तो बहुत ज्यादा पाप कर्म में भी फंस सकता है। रजोगुण में बड़ा खतरा है, इधर भी इस साइड में भी काफी कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उस साइड में भी काफी आगे बढ़ सकता है। बहुत जो है ना, मतलब अनिश्चित रहता है, रजोगुण में व्यक्ति बहुत अनिश्चित है। तमोगुण में तो नीचे जाएगा है कि नहीं, और सत्वगुण में ऊपर जाएगा। नहीं, रजोगुण में कोई व्यक्ति जो है ना ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, मतलब ये है, स्थिरता नहीं है रजोगुण में भी, है ना। तो अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव शिक्षा देते हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं तो किस प्रकार से धर्म अर्थ काम को धारण करते हैं। गृह मेधी उनको कहा गया है, गृह मेधी। तो ये तीसरे स्कंद का 32वां अध्याय है, कर्म बंधन, इसमें कर्म बंधन है। मोक्ष, वैसे मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। तो मोक्ष का मतलब है कर्म बंधन से छूटने की इच्छा करना, है ना। लेकिन रजोगुण में कोई व्यक्ति कर्म बंधन से छूटने की इच्छा नहीं करता है, धर्म अर्थ काम इन तीन चीजों को ही धारण करता है, है ना। तब कपिल भगवान बताते हैं, माता देवहूति से कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है, धर्म से अर्थ है ना, और इस तरह वह आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। मतलब काम, धर्म अर्थ काम, धार्मिक कार्यों से अर्थ की प्राप्ति करना और अर्थ से काम यानी इंद्रिय तृप्ति करना। हाँ, तो वो व्यक्ति पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, फिर धार्मिक कार्य, फिर उससे धन की प्राप्ति, और फिर उससे फिर काम भोग प्राप्त करने, ये चलता रहता है। अथयो गृह मेधियां धर्माने वा वसन गृह काममर्थम च धर्मान स्वान दोग्धे भोयाम पिपर्तीतां। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो गृह मेधी और दूसरे गृहस्थ है ना। गृहस्थ आश्रम होता है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब कार्य किए जाते हैं, और दूसरा होता है गृह मेधी है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं गृह मेधी का जीवन लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति, धर्म का आचरण करना, लेकिन उससे धन की प्राप्ति, और फिर जो लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति करना। और गृहस्थ आश्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार है ना। यह भगवान गृह मेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है ना, वो दोबारा जन्म लेना चाहता है, तो क्यों, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो चाहता है कि मुझे अच्छा जन्म मिले, अच्छे कुल में जन्म मिले, राजा के परिवार में जन्म मिले, या स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, पितृलोक में जाएंगे, विद्याधरों के लोक में जाएंगे। तो इस तरह से जो है इस भौतिक संसार में कई प्रकार की स्थितियों में वो जो है जीवन का भोग करना चाहता है, उसके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, है? इस तरह से भोग करना, उस तरह से भोग करना, और सुखी रहने की कई प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। आगे प्रभु लिखते हैं उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपने इंद्रियों को तुष्ट करे, उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने और अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है, वो किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्ग लोक को जाना चाहता है, किंतु वह आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है, ऐसा व्यक्ति गृह में भी कहलाता है। अब गृहस्थ क्या है, गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है, किंतु उससे कोई लगाव नहीं रखता। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचना रहता है। गृहस्थ आश्रम, किंतु यह कपिल देव गृह मेधी के विषय में बता रहे हैं जिनका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है। तो गृहस्थ आप समझिए सत्वगुण में है और गृह मेधी रजोगुण में। तो प्रभुपाद लिखते हैं गृह मेधी के विषय में कपिल देव बता रहे हैं जिनका लक्ष्य भौतिकवादी संपन्न जीवन बिताना है और जिसे वे यज्ञ दान तथा सत्कर्म द्वारा प्राप्त करते हैं। इतना तो है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है वो, और धार्मिक कार्यों में विश्वास करता है, पुण्य कर्मों में विश्वास करता है, लेकिन ये सब किस लिए है, भोगने के लिए, काम इंद्रिय तृप्ति भोगने के लिए। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, वे चर्वित को पुनः चर्वित करना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। रजोगुणी आगे कपिल भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। धर्म धर्म में आसक्त होते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति में आसक्त नहीं होते। क्योंकि कृष्ण की भक्ति में तो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, है ना, तो इसलिए वो धर्म के द्वारा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने और देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते। देवताओं के व्रत करते हैं, पितरों के व्रत करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, है ना, लेकिन क्यों, इस देवता को प्रसन्न करके मुझे ये सुख प्राप्त होगा, उस देवता को प्रसन्न करके ये सुख प्राप्त होगा, इसलिए सचापि भगवन धर्मा काम मूढ़ा परांगमुखा यजते कतुभिर देवान पितृंसाम श्रद्धयान्विता। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में 7:20 कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। 7:20 श्लोक भगवान कहते काम स्थास्ते हृदय ज्ञानम, कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो चुका है, प्रपद्यन्ते न देवता, इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं, शरण लेते हैं। प्रॉपर लिखते हैं वे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं, फलतः वे देवताओं की देवताओं को पूजते हैं। निस्संदेह वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि जो धन स्वास्थ्य या विद्या का इच्छुक हो उसे देवताओं का पूजन करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति की मांगे अनेक हैं, अतः उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। जो गृह में भी समृद्ध जीवन बिताना चाहते हैं वे सामान्यतया पिंडदान द्वारा देवताओं या पितरों को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति से विहीन होते हैं और भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार का तथाकथित पवित्र और धार्मिक व्यक्ति निराकारवाद का प्रतिफल है। निर्विशेषवादियों की धारणा है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः अपने लाभ के लिए चाहे जिस रूप की कल्पना करके उसकी पूजा कर ली जाए। अतः गृह में भी या भौतिकतावादी व्यक्ति कहते हैं कि वे भगवान की पूजा के लिए किसी देवता की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से हिंदुओं में से जो लोग मांसाहारी हैं वे क्या करते हैं, वे काली की पूजा को उत्तम मानते हैं, क्योंकि देवी के समक्ष एक बकरे की बलि का विधान है। उनका कहना है कि कोई चाहे देवी काली की पूजा करे या भगवान विष्णु अथवा किसी देवता की, लक्ष्य एक सा होता है। ये उच्च कोटि का पाखंड है और ऐसे लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें यही सिद्धांत पसंद है। भगवत गीता ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करती, इसलिए भगवत गीता में साफ कह दिया है कि उनका ज्ञान खत्म हो चुका है जो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। उसमें स्पष्ट उल्लेख है, किसमें, भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां बुद्धि भ्रष्ट लोगों के लिए हैं। यहाँ इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसीलिए काम मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। काम मूढ़ा, जिसका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियां खो दी हैं या जो इंद्रिय तुष्टि के लिए काम वासना से अंधा हो चुका है। काम मूढ़ लोग कृष्ण भक्ति तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजने की निंदा भगवत गीता तथा भागवत दोनों में की गई है। आगे कपिल भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर, देखो जैसे आज का श्लोक है, धर्म अर्थ काम को धारण कर दे, इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्र लोक को जाते हैं, जहां वे सोमरस का पान करते हैं और फिर इसी लोक में लौट आते हैं। तच्छ्रद्धया क्रांतिमतीं पितृदेव व्रता पुमान गत्वा चांद्रमसं लोकं सोमपापुनरेशति। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं चंद्रमा को स्वर्ग का एक लोक माना जाता है। विभिन्न वेद विहित यज्ञों जैसे देवों एवं पितरों की पूजा संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाता है, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक नहीं रह पाता। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष है और देवताओं की काल गणना में एक दिन जो 12 घंटे यहाँ के 6 महीने के बराबर होते हैं। तो सोचो यहाँ के हिसाब से कितनी बड़ी आयु हो गई,
60,000 साल।
नहीं, ज्यादा होगा, देवताओं के 10,000 साल है ना, देवताओं का 1 साल यहाँ के 360 साल के बराबर होता है ना। तो 10,000 में 360 का गुणा करो,
तो 360 में 10,000 का गुणा करने से कितना होता है? तो पहले 100 से गुणा करो तो 36,000 होता है, फिर 100 से गुणा करो तो 36 लाख होता है, तो 36 लाख वर्ष यहाँ के हिसाब से,
यहाँ के हिसाब से उनका जीवन अवधि है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चंद्रमा तक स्पुतनिक जैसे किसी भौतिक यान द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, किंतु पुण्य कर्म करने से भौतिक भोगों के प्रति आसक्त लोग वहां पहुंच सकते हैं। जब यज्ञ कर्मों का पुण्य समाप्त हो जाता है तो चंद्रलोक तक पहुंच जाने पर भी मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9:21 में हुई है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो देखा, रजोगुण में जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम को धारण करता है तो उसको ऊपर नीचे से ऊपर और ऊपर से आना जाना पड़ता है। आगे, जब भगवान हरि सर्पों की सैया पर जैसे अनंत शेष कहते हैं सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोग सम्मिलित हैं विलीन हो जाते हैं। तो भगवान जब सैया में सोते हैं, यानी ब्रह्मा जी की जब रात होती है, ब्रह्मा जी की जब रात आती है, तो स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ये तीनों लोग डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। यदा चाहिंद्र सैयाम शेते नमता सनो हरी तदा लोकालयम यान्ति तएते गृह मेधिनाम। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिकता के प्रति आसक्त लोग चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक तक पहुंचने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ऐसे कई स्वर्ग हैं जिन्हें वे दीर्घकालिक आयु तथा इंद्रिय भोग की सामग्री प्राप्त करके अधिकाधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से चाहते हैं, किंतु आसक्त व्यक्ति ये नहीं जानते यदि किसी को उच्चतम लोक ब्रह्म लोक मिल भी जाए तो विनाश वहां भी विद्यमान रहता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भले ही कोई ब्रह्म लोक तक क्यों ना चला जाए, किंतु तो भी उसे वहां जन्म मरण रोग तथा जरा के कष्ट मिलेंगे। केवल भगवान के धाम वैकुंठ लोक पहुंचकर ही मनुष्य इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु गृह में भी इस लाभ का उपयोग नहीं चाहते। वे तो निरंतर एक शरीर से दूसरे में अथवा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण को ही उत्तम समझते हैं। अब प्रलय प्रभुपाद बताते हैं, प्रलय के 2 प्रकार हैं। एक प्रलय ब्रह्मा की मृत्यु के समय होता है, उस समय स्वर्गों सहित सारी स्वर्गिक प्रणालियां जल में विलीन होकर गर्भोदक सागर में सर्पों की सैया पर लेटे हुए विष्णु के शरीर में प्रवेश करती हैं। और दूसरा प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में घटित होता है, जिसमें सभी निम्न लोक विनष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी इस रात्रि के बीतने पर जागते हैं तो ये निम्न लोक पुनः उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि जो लोग देवों की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि जाती रहती है। वे अल्प ज्ञानी पुरुष ये नहीं जानते यदि वे स्वर्ग जाते भी हैं तो प्रलय के समय वे स्वयं देवता गण तथा उनके लोक विलीन हो जाएंगे। उन्हें इसकी सूचना नहीं रहती कि नित्य वरदान से पूर्ण जीवन प्राप्त किया जा सकता है। तो जो गृह मेदी हैं वे नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा जी की जब रात शुरू होती है तो ये जितने भी लोग नीचे के लोग हैं इन सब की प्रलय हो जाती है, है ना, नष्ट हो जाते हैं। आगे कपिल भगवान कहते हैं, जो बुद्धिमान हैं और शुद्ध चेतना वाले हैं वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते हैं। यह है सात्विक। एष धर्मान् न दुर्हन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा निस्त्यकर्माणां प्रशांतां शुद्ध चेतसः। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, इस प्रकार के पुरुष का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन क्षत्रिय थे और उनका धर्म क्या था, युद्ध करना। सामान्यतया राजा लोग अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से इनकार कर दिया है? उन्होंने कहा कि यद्यपि सज्जनों से युद्ध करके वो साम्राज्य प्राप्त कर सकता हूं, किंतु मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। किंतु जब कृष्ण ने आदेश दिया और जब वो भगवद गीता के उपदेशों से आश्वस्त हो गए कि उनका धर्म कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वे युद्ध करने लगे। कौन? अर्जुन। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं अपितु भगवान के संतोष के लिए युद्ध किया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग अपना निर्धारित कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वे निस्संग कहलाते हैं, अर्थात वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। न्यस्त कर्माणः बताता है कि उनके कर्मों का फल भगवान को प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे लोग अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करते प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना होकर भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। ऐसे भक्त प्रशांता अर्थात परम संतुष्ट कहलाते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण भावना भावित, अर्थात जिसकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। चेतना शुद्ध ना रहने पर मनुष्य अपने को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु शुद्ध चेतना होने पर वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानता है। अपने को भगवान के शाश्वत दास के पद पर बिठाकर और निरंतर उन्हीं के लिए काम करते हुए वह वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। जब तक कोई निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, तब तक वह चिंता से पूर्ण रहता है। सामान्य चेतना और कृष्ण चेतना में यही अंतर है। फिर कपिल भगवान कहते हैं, जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। हेतु सत्य मनसा कर्मसो श्रद्धयान्वितां कुर्वन्त्य प्रति सिद्धानि नित्यान्यपि च कृष्णसह। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भागवत के इस श्लोक में तथा अगले छह श्लोकों में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना हुई है। शास्त्रों का आदेश है कि जो भौतिक सुखों को भोगने में बहुत अनुरक्त हैं, उन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करना होता है। उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, वे कभी भी वैकुंठ नहीं जा सकते। उन लोगों की बात तो दूर रही जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जो किसी भी देवता की पूजा करते हैं, कैसे? स्वतंत्र ईश्वर के रूप में, तो वे कभी भी कर्म बंधन से नहीं छूट सकते हैं। अब ये रजोगुण के कारण है। तो आगे कपिल भगवान कहते हैं, ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं। रजोगुण में क्या है? चिंता। इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूछते हैं और अपने परिवार सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ठीक है ना? तो वही है, देश सेवा समाज सेवा के नाम पर ये सब है क्या? कोई रजोगुण है। रजोगुण में कोई व्यक्ति बहुत त्याग करता है, लेकिन किस लिए त्याग करता है? इंद्रिय तृप्ति, मेरे देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति मिले, है ना? जैसे कि हमने एक घटना बताई थी कि महात्मा गांधी जब लंदन में गए थे तो वहां के जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने उनसे पूछा महात्मा गांधी से कि आपको यहाँ का जीवन कैसा लगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं, अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय को इसी प्रकार का जीवन प्राप्त हो, इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, है ना? तो क्या रजोगुण? अब वैसे कहने के लिए महात्मा है, बड़े महात्मा है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को ये सुविधा मिले, इसके लिए वो त्याग कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए त्याग किया है अपने सुविधाओं का, तो भाई दूसरे भारतवासियों को सुविधा नहीं मिली तो मैं क्यों सुविधाएं स्वीकार करूं, है ना? लेकिन वो ये चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को इस प्रकार जीवन की सुविधाएं मिले तो मैं भी सुविधाएं स्वीकार करूं, है ना? तो ऐसे देखने में तो लगता है कि बड़ा त्याग है, लेकिन ये त्याग किसमें है? रजोगुण में है। है ना, रजोगुण में। जब प्रभुपाद जी गए लंदन में और प्रभुपाद से जब पूछा कि आपको कैसा लगा यहाँ का जीवन, यहाँ का, तो जब लंदन के अधिकारियों ने प्रभुपाद से पूछा कि आपको यहाँ का जीवन कैसा लगा, तो प्रभुपाद कहते हैं कुछ भी तो अच्छा नहीं है, है? यहाँ क्या संपन्नता है, कागज और प्लास्टिक की ही संपन्नता और क्या है, कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इस चीज को कोई सम्मान नहीं दिया है। प्रभुपाद जी चाहते हैं जो है कैसा सादा जीवन, उच्च विचार, आध्यात्मिक नियमों का पालन करें लोग, है ना, अपने जीवन की आवश्यकताओं को घटाएं, है ना, और कृष्ण भावना भावित बने। तो प्रभुपाद जी चाहते इस प्रकार से, है ना। तो प्रभुपाद जी को महात्मा कोई नहीं जानता, तो ये जो है ना जो असली महात्मा है वो ऐसे होते हैं प्रभुपाद जी जैसे हैं। आगे रजसा कुंठ मनसा